कशिश बच्चों जैसे मुंह बनाए रजनी से शिकायत कर रही थी। दीदी, आप तो इतनी स्वीट हैं, पर वो दोनों बूढ़ी औरतें बहुत गंदी हैं। इतनी सी देर में इतने ताने मार दिए उन्होंने मुझे, जितने आज तक कुल मिलाकर भी मेरी मम्मी ने ताने नहीं मारे होंगे मुझे। आपने देखा कैसे बोल रही थी वो, मुझे थप्पड़ भी मारने वाली थी। ऐसा कोई करता है किसी के साथ? बहुत बुरे हैं वो दोनों, करेले से भी कड़वी बातें बोलती हैं, और मुझे करेला बिल्कुल नहीं पसंद। वो ना बिल्कुल हिटलर और छोटा हिटलर हैं, मुझे वो दोनों बहुत गंदी लगीं। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर रजनी मुस्कुराई, फिर उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूकर उसे समझाया, ऐसा नहीं कहते कशिश, वे बड़ी हैं हमसे, तो ऐसे उनका अपमान नहीं करते। फिर वे पूरी तरह से गलत भी नहीं थीं, रिश्ते में वे तुम्हारी सास हैं और सास तो ऐसी ही होती हैं। तुम भी तो समझो कि वे पहले ही इस शादी से खुश नहीं हैं, इसीलिए अपनी नाराज़गी तुम पर निकाल ली। फिर कहा तो उन्होंने ठीक ही था, तुम अब इस घर की बहू हो, घर की इज्जत हो, तो तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, घर के रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा, मान मर्यादा बनाए रखना होगा। मैं मानती हूँ कि बड़ी मम्मी और चाची का व्यवहार बहुत खराब था, पर ज्यादातर सासें ऐसी ही होती हैं। तुम्हें उनकी बातों को दिल पर नहीं लगाना है, उनके लिए अपने मन में कड़वाहट नहीं भरनी है। तुम उन्हें पूरी तरह से खुश या संतुष्ट नहीं कर सकती, पर तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि उन्हें शिकायत का मौका न मिले और वे तुम्हें कुछ न कह सकें। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। कुछ दिन तुम्हें परेशानी होगी, फिर तुम मेरे घर के माहौल में ढल जाओगी। कशिश ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, चुप रह गई। रजनी ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और फिर बैग से साड़ी निकालने लगी। दीदी, ईशान कौन सी दुकान गया है? रजनी कशिश को साड़ी बांधना सिखा रही थी, तब अचानक कशिश के दिमाग में रजनी की कही बात कौंध गई और उसने बिना हिचकिचाए रजनी से पूछ लिया। उसका सवाल सुनकर रजनी ने चौंकते हुए उसे देखा और समझाते हुए बोली, कशिश, ऐसे अपने पति का नाम नहीं लेते, अकेले में तो फिर भी कोई बात नहीं, पर किसी और के सामने ईशान का नाम लेकर मत पुकारना उसे, और ज़रा तमीज़ और तहजीब से बात करना उसे। जाने क्यों, पर कशिश रजनी की हर बात बिना कोई बहस किए मान लेती थी। शायद वो इतने प्यार से समझाती थी कि कशिश उनका दिल नहीं दुखा पाती थी। रजनी से ईशान बहुत प्यार करता था, उसका बहुत मान करता था, इसीलिए कशिश भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। शायद इसीलिए भी बिना कोई बहस किए उसकी बात मान लेती थी। उसने इस बार भी सर हिला दिया। दीदी, मिश्रा जी कौन सी दुकान गए हैं? उनसे कहना मेरे लिए कुरकुरे लेकर आएं, मेरा सारा खाने का सामान आंटी के घर पर छूट गया है। कुछ देर चुप रहने के बाद कशिश फिर बोल पड़ी। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर रजनी मुस्कुराई और उसके साड़ी का पल्लू सेट करते हुए बोली, तुम्हारे मिश्रा जी चीज़ वाली दुकान नहीं गए हैं, वो तो अपनी मिठाई की दुकान में गया है। उनकी अपनी मिठाई की दुकान है? कशिश ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर रजनी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, यही विश्वनाथ मंदिर के पास उसकी दुकान है, उसने बताया नहीं तुम्हें? वो तो बस मुझ पर चिल्लाते हैं और मुझे डांटते हैं, प्यार से तो बात ही नहीं करते, अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं। कशिश ने नाक से कोड़ते हुए जवाब दिया और मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। ईशान के बेरुखी भरे बर्ताव के कारण वो बहुत नाराज थी। उसकी बात सुनकर रजनी ने बेबसी से सर हिला दिया और उसे तैयार करते हुए बोली, ऐसा ही है वो, जल्दी से किसी से घुलता मिलता नहीं है, अपने दिल की बातें किसी से बांटता नहीं है, सब अपने अंदर रखता है, इसीलिए थोड़ा कठोर हो गया है। दिल की नाराजगी शब्दों में कड़वाहट बनकर घुल जाती है, पर दिल का बुरा नहीं है। तुम उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओगी तो समझने लगोगी उसे, और जब उसे तुम पर भरोसा हो जाएगा, अपना दिल खोल कर रख देगा तुम्हारे आगे। तुम बस उसे खुश रखने की और उसे समझने की कोशिश करो, वक्त दो इस रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। कशिश ने ईशान के बारे में सोचते हुए सर हिला दिया। रजनी ने उसके सर पर पल्लू रख दिया और एक बार फिर उसे समझाने लगी, कशिश, नीचे जाकर बड़ी मम्मी और चाची के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करना, उनकी बात का पलटकर जवाब मत देना, निगाहें झुकाकर रखना और सर से पल्लू नहीं हटाना, बस कुछ दिन ये सब कर लो, जब शादी को थोड़ा वक्त हो जाएगा तो ये सब पाबंदियां नहीं लगाएंगी तुम पर। कशिश ने सर हिला दिया। नीचे आकर रजनी के बताए अनुसार उसने दोनों औरतों के पैर छूकर प्रणाम किया तो दोनों ने बेमन से उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गईं। कशिश ने बुरा सा मुंह बना लिया। रजनी ने उसे खाना खिलाया, फिर खुद ईशान का खाना लेकर चली गईं। कशिश भी कमरे में चली आई क्योंकि नीचे तो कोई था ही नहीं जिससे वो बात कर सके। रजनी काशी मिष्ठान भंडार पहुंची तो ईशान शर्ट उतारकर एक तरफ रखे छैना बना रहा था। रजनी को देखकर दुकान में काम करने वाले दोनों लड़के रामू रघु ने आकर रजनी को प्रणाम किया। रजनी ने जवाब दिया, फिर ईशान के पास चली आई। ईशु, चलो पहले खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है दीदी, ईशान ने बिना उसे देखे ही जवाब दिया और अपने काम में लगा रहा। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि नाराज है वो। रजनी एक पल को खामोशी से उसको देखती रही, फिर उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बोली, ईशु, नाराजगी हमसे है ना, इसमें खाने का तो कोई दोष नहीं, फिर खाने से मना करके उनका निरादर क्यों कर रहे हो? हमारे वजह से खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? चलकर खाना खा लो, फिर हमें थाने भी जाना है।
ईशाना बिनकार नहीं कर सका। उसने रामू को काम संभालने को कहा, फिर दुकान में बने स्टोर में चला आया जहाँ एक तरफ एक चौकी भी लगी हुई थी। ईशान हाथ धोकर चौकी पर आकर बैठ गया तो रजनी ने जल्दी से खाना थाली में लगाकर उसके सामने रख दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गई। ईशान खामोशी से खाना खाने लगा। ईशु, क्यों इतना गुस्सा करके अपना खून जलाते हो? वे हमारे अपने हैं ना, उनकी कुछ बातें खामोशी से सुनने पर अगर घर में शांति का माहौल बनता है तो इसमें बुराई क्या है? ये बात रजनी ने ईशान के खाना खाने के बाद कही थी। शायद उसकी नाराजगी दूर करना चाह रही थी, पर इसका उल्टा ही असर होता नजर आ रहा था। ईशान के शांत चेहरे पर एक बार फिर नाराजगी के भाव उभर आए थे। अगर उनकी बातें सही हो तो सुनने में कोई बुराई नहीं, पर उनके बेवजह के तानों को खामोशी से सुनने के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और कैसे अपने हैं वे हमारे, जो हमें सिर्फ जलील करने के लिए याद करते हैं? कल तो उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, ये तक नहीं सोचा कि घर की बहू घर आई है। ऐसे में अगर परिवार वाले ही उसके स्वागत के लिए नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा उसे? आज उन्हें परिवार के रीति रिवाज याद आ गए, वे भी सिर्फ इसलिए ताकि हमें जलील कर सकें, वरना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप क्यों उनकी हर बात खामोशी से सुनती रहती हैं, ना कभी खुद जवाब देती हैं, ना ही मुझे जवाब देने देती हैं। ईशान काफी खफा और नाराज लग रहा था। रजनी ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर गंभीरता से बोली, ईशु, अगर बोलने से रिश्ते टूटते हैं तो चुप्पी ही बेहतर है। फिर जरूरी तो नहीं कि हर बार जवाब दिया ही जाए, कभी कभी खामोशी खुद एक जवाब होती है, और जब हम जवाब नहीं देते तो वक्त जवाब देता है। हम जानते हैं कि हम सही हैं, हमारे महादेव जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो वही सब संभालेंगे। वैसे भी चाची और बड़ी माँ की पूरी बात गलत नहीं थी। हाँ, कहने का तरीका और इरादा गलत था, पर बात तो सही थी कि कशिश घर की बहू है तो उस हिसाब से उसे रहना होगा, वरना लोगों को मालूम चलेगा तो हमारे घर की बदनामी होगी।
आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता दीदी, आप अपनी दलीलों से मुझे निःशब्द कर देती हैं। पर दीदी, हर बार खामोशी और गलत के सामने झुकना भी ठीक नहीं होता है। वैसे भी वो परिवार नाम का एक परिवार है, वरना उस घर में दो परिवार रहते हैं और हमारे परिवार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सब नाम के लिए एक छत के नीचे रह जरूर रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब सब अलग अलग हो जाएंगे।
पर घर का बंटवारा हमारे वजह से तो नहीं होना चाहिए ईशु, जब तक संभव है तब तक तो हमें परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब मुझे इस बारे में आपसे कोई बहस नहीं करनी है, आपको देर हो रही होगी तो आप जाइए और मुझे भी काम करने दीजिए। ईशान की बात सुनकर रजनी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, फिर वहां से चली गई। हर बार की तरह इस बार भी इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकला और जहर के घूंट पीते हुए ईशान ने खामोशी इख्तियार कर ली।